ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है कि वो पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में दोबारा विचार करे। गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आतंकवादी ढांचे को खड़ा करने में लगाएगा।
IMF द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे।
रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इसने देश विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न केवल दुश्मन पर अपना वर्चस्व कायम किया बल्कि उनका सफाया भी किया। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कुशल भूमिका की सराहना दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचने में सक्षम है और ऑपरेशन सिंदूर से ये साबित भी हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, खुफिया एजेंसियों से प्राप्त सटीक जानकारी और हमारी तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है। उन्होंने खुफिया जानकारी साझा करने के उद्देश्य से दिल्ली में आज नए मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरह से पाकिस्तान और उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी और सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है, उसने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। इस कार्रवाई के अंतर्गत 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर करने और पाकिस्तान के हमलों को बेअसर करने के साथ ही भारत का एक नया एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर अब चर्चा का विषय बन चुका है। पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित स्वदेशी रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने नियत समय में निर्धारित लक्ष्यों को रोकने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। देश भर के 125 से अधिक शीर्ष व्यापारियों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ यात्रा, पर्यटन, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस बीच कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की संस्थानों के साथ अपने शैक्षणिक समझौतों को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान भ्रामक दावों को डिजिटल माध्यम से लगातार फैला रहा है। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी अकाउंट्स ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ की एक तस्वीर प्रसारित कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना को निर्विवाद रूप से आसमान का राजा कहा जा रहा है। हालांकि वास्तव में ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है और द डेली टेलीग्राफ ने ऐसा कोई भी लेख नहीं छापा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। उन्होंने संस्कृत के विद्वान और चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक स्वामी रामभद्राचार्य को पुरस्कार प्रदान किया। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन। ज्ञानपीठ चयन समिति ने 2024 के लिए प्रसिद्ध गीतकार उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान स्वामी रामभद्राचार्य को पुरस्कार के लिए नामित किया था। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय की एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि ये वेबसाइट समय पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सभी हितधारकों को सशक्त बनाएगी। ये वेबसाइट विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,380 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 42 अंक गिरकर 25,020 के स्तर पर बंद हुआ। भाला फेंक में वर्तमान विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज कतर के दोहा में डायमंड लीग प्रतियोगिता में खेलेंगे। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता भारत के किशोर जेना भी भारतीय चुनौती रखेंगे। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी महिलाओं की 3,000 मीटर स्टिपल चेज और गुलवीर सिंह पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में आज मैदान में उतरेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारतीय अंडर 19 टीम का सामना मालदीव से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।